SBS हिंदी। संदीप जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार अनिता जी, हाँ भैया
बिल्कुल अच्छी हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप भी उतने ही अच्छे हैं और उतने ही प्रसन्न हैं जितने हम आपसे बात करके प्रसन्न हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और आपने योयो माँ के साथ में कोलैबोरेट किया है और उसी से ही आपको ग्रैमी अवार्ड भी मिला, तो एक बार फिर से मुबारक भी देना चाहूँगी उसके लिए।
आप सबों को बधाई, बिकॉज मुझे लगता है कि अवार्ड सिर्फ हमारे किसी एक के लिए नहीं है, ये तो हम सबों के लिए है कि जहाँ संस्कृति और गीत को इज्जत मिले और अपने देश के संस्कृति और संगीत को इज्जत मिले, तो ये सबकी विक्ट्री है। सो आपको भी उतनी ही बधाई
जी,
और आपके सभी श्रोताओं को भी उतनी ही बधाई।
आपका बहुत बड़प्पन है ये, तो उत्सुकता मेरे मन में यही है जानने के लिए कि योयो माँ से आप कैसे मिले थे और ये कोलैबोरेशन जो आपका था ये कैसे संभव हुआ।
जी देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो आपके शायद नसीब में लिखा होता है। तो मैंने अमेरिका में बजाना तो शुरू कर दिया था 1990 से ही, बट 1990 मैं आता था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजा के चला जाता था। तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ आया और बजाया बड़े बड़े हॉल में। मेरा डेब्यू कॉन्सर्ट हुआ पंडित रविशंकर जी के साथ जब मैं सिर्फ 16 साल की उम्र का था। लेकिन करीब 19 साल पहले तब मैं ये भी नहीं जानता था कि योयो मा कौन है, क्योंकि आप जब इंडिया में बड़े होते हैं आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, तो हमारे देश में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का उतना चर्चा नहीं है
जी।
तो मुझे, हालांकि मैं अमेरिका में बजाता था 1990 से, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि योयो मा कौन है और कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने बड़े स्टार हैं। तो मुझे उससे पहले मेरा एक ग्रुप होता था जिसका नाम था गजल। तो एक्चुअली मेरा पहला ग्रैमी नॉमिनेशन हुआ था एक एल्बम जिसका नाम था दी रेन
जी।
और हमारे ग्रुप का नाम था गजल, जिसमें इंडिया के बहुत जाने माने सितार वादक उस्ताद शुजात खान
जी,
तबले पे मैं और एक ईरानियन म्यूजिशियन केहान कालहोर, ये हम तीनों का एक ग्रुप था और हम लोग काफी सक्सेसफुल थे और पूरे दुनिया में बजाते थे
जी।
केहान कालहोर को योयो मा के ऑफिस ने अप्रोच किया कि हम लोग ऐसा ऐसा एक ग्रुप बनाने वाले हैं, क्या आप हमारे लिए एक पीस लिखेंगे
जी।
केहान ने कहा जरूर। तो ये पीस कहाँ बजेगा भाई? तो ये पीस बजेगा दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉल्स लिंकन सेंटर
जी।
और न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स के साथ। तो केहान ने कहा ठीक है। अब जब उसने वो पीस कंपोज किया उसमें तबले की जरूरत थी, तो इन लोगों ने, योयो मा और इनके ऑफिस ने सोचा कि पहले अमेरिका से ही कोई तबला वादक मिल जाए उनको। तो उन लोगों ने एक आध लोगों के साथ कोशिश की लेकिन वो बात जमा नहीं इन रिहर्सल्स में। और केहान इनसे कहता रहा कि आप संदीप को बुलाइए, वो बजाएगा तो आप देखना इस म्यूजिक में चार चांद लग जाएगा। तो इनिशियली ये था कि अब इंडिया से किसी को बुलाना पड़ेगा, और देखिए मैं कोई बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ म्यूजिशियंस। जनरली इंडिया में आप सुनेंगे मेरे साथ पुष्ट ने सितार बजाया, मैं सेवेंथ जनरेशन ऑफ सरोद प्लेयर्स। आई एम नॉट, मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बंगाली फैमिली। मेरे पेरेंट्स They loved Indian classical music. So, केहान के कहने पे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो let's invite him. तो मुझे बुलाया गया सिर्फ एक पीस बजाने के लिए जो कि 20 मिनट लंबा एक पीस था। उस पीस में मेरे बजाने का असर ऐसा हुआ कि योयो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह मेरे मित्र बन गए, मेरे बड़े भाई बन गए। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस भी पीस में बजाओ, उस भी पीस में बजाओ। तो धीरे धीरे एक पीस से मैं और ज्यादा और दूसरे दूसरे म्यूजिक में भी बजाना शुरू किया
जी।
तो शुरुआत मेरी जान पहचान की वहां से हुई और फाइनली मुझे लगता है 2002 की बात है, ये पहला आई थिंक 2000 की बात है जबकि मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत की, लेकिन 2002 में फिर उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि आप हमारे लिए कुछ कंपोज करिए।
अच्छा,
तो धीरे धीरे जो रिश्ता है वो और मजबूत होता गया।
क्या बात है, आप किसी संगीत घराने से नहीं आते हैं, आपको विरासत में नहीं मिला है और बहुत ही अनोखी सी शुरुआत लगी आपकी कि आपके टीचर ने तो आपको डॉक्टर के पास भेजा था और आपको जो दवाई मिली वो तबला, तो वो बताइए।
पिताजी की कृपा है, वो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री काशीनाथ दास जी और मेरी माँ आरती दास, उन लोगों का विजन है। आपने बहुत मजे की बात याद दिला दी। तो मैं इंडिया में पटना में मेरी पैदाइश हुई और सेंट जेवियर स्कूल में मैं पढ़ता था। तो एक टीचर ने एक दिन मेरे पिताजी को बुला के कंप्लेन किया कि भाई आपके बेटे इज डिस्टर्बिंग द क्लास, ये या तो टेबल पे बजाते रहते हैं और इनसे मना करो तो ये पैर से बजाना शुरू कर देते हैं, तो यू शुड टेक हिम टू द डॉक्टर।
अच्छा।
तो मुझे तो लगा आज मैं घर जाऊंगा तो डांट भी पड़ेगी और डॉक्टर का इंजेक्शन भी लगेगा, लेकिन थैंकफुली आई हैड अ ग्रेट फादर कि मैं घर पहुंचा तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अपसेट मेरे कॉफी टेबल पे एक जोड़ा तबला रखा हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या पापा, तो उन्होंने बोला ये तबला है बेटा और आपका लेसन जो है आज से ही शुरू होगा। और मुझे डॉक्टर की जगह मेरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पटना में श्री शिव कुमार सिंह जी के पास वो लेके गए और तत्पश्चात करीब 2 साल उनसे सीखने के बाद वो तबला के महापुरुष पंडित किशन महाराज जी बनारस में उनके पास मेरे पिताजी मुझे लेके गए।
जी,
तो यहाँ से मेरे तबले की जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुई।
जी, तो आपकी जीवन यात्रा संगीत की दुनिया में तो चल पड़ी, आसान तो नहीं रही होगी?
नहीं, देखिए अनलाइक स्पोर्ट्स, अनलाइक एजुकेशन, जहाँ पे ना मापदंड बहुत क्लियर हैं कि आपने मुझे बीट किया तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन आप हुई, या आज आज आप टेनिस में आपने मुझे हराया, मैं कितना भी चिल्लाऊं कि मैं आपसे अच्छा प्लेयर हूँ लेकिन जब तक मैं आपको हराऊंगा, तो देर आर क्लियर स्टैंडर्ड्स कि भैया आपने ये टूर्नामेंट खेलना है फर्स्ट। म्यूजिक कैसा है, आप कहेंगी लता मंगेशकर जी सबसे अच्छी गायिका हुई, मैं कहूंगा नहीं आशा भोसले, आप मुझे गलत प्रूफ नहीं कर सकती। सो देर आर नो क्लियर पाथ। आप कहेंगे पंडित रविशंकर, मैं कहूंगा उस्ताद विलायत खान, आप कैसे गलत प्रूफ करेंगी मुझे। तो ये इट्स अ वेरी पर्सनल, ऑब्जेक्टिवली पर्सनली आदमी का चॉइस होता है। तो इसलिए म्यूजिक इज अ डिफिकल्ट आर्ट इन जनरल, इज अ डिफिकल्ट करियर, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ 90% इंडियन पेरेंट्स जब पढ़ाई की बात आती है इंडिया में तो आईआईटी से नीचे नहीं सोचते, आईआईएम से नीचे नहीं सोचते, एम्स से नहीं सोचते कि भैया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो आईआईटी, आईआईटी में नहीं हुआ तो बीआईटी, राइट? लेकिन जब गाने बजाने की जहां सवाल है, हम पड़ोसी के पास भेज देते हैं अपने बच्चे को कि अच्छा बेटा वो अंकल अच्छा सितार बजाते हैं वहां सीख लो, और फिर ये उम्मीद करना कि मेरा बेटा पंडित रविशंकर जैसा सितार बजाएगा, वो तो नहीं हो सकता। तो मेरे पीछे मेरे पिताजी का इन्वेस्टमेंट था कि ही टुक मी टू द हार्वर्ड ऑफ तबला प्लेइंग और टू द ऑक्सफर्ड ऑफ तबला प्लेइंग। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये टैलेंट है इस बच्चे में तो जो बेस्ट है उनके पास लेके जाऊंगा। तो आई हैव सॉलिड ट्रेनिंग, मैं 12 साल गुरु शिष्य परंपरा, जो मैं सोचता हूँ आपके श्रोता लोगों को सुनना चाहिए कि मैं किसी स्कूल ऑफ म्यूजिक में नहीं गया, मैं कोई कॉलेज ऑफ म्यूजिक नहीं गया, मैं गुरु के घर में रह के 12 साल तबला सीखा। तो आई हैड सॉलिड ट्रेनिंग और जिस तरह से उन्होंने हमें तबला सिखाया और फिर जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें स्टेज पे, कि उन्होंने हमें एक शाओलिन मंक की तरह हमें तैयार कर दिया कि आप किसी भी वक्त में मुझे दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे भी आप उतार दे तो मैं बजाने के लिए तैयार हूँ। सो आई डोंट बिलोंग टू अ फैमिली, धरोहर में नहीं मिला, लेकिन मुझे सॉलिड ट्रेनिंग मिली, तो वो तो जरूर गुरु कृपा और पिता कृपा मैं मानता हूँ।
क्या बात है, बिल्कुल ये मूल मंत्र है कि किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से ही तरक्की भी हो सकती है, और रास्ता आसान तो कोई नहीं होता, सिर्फ वो दिखता है आसान।
बिल्कुल,
जी
बिल्कुल।
और आपने ये जो कोलैबोरेट किया और संगीत की दुनिया में, तो हम एक दूसरे के संगीत के प्रति बहुत आकर्षित भी होते हैं क्योंकि हम उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं, लेकिन अगर एक आम लोग की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा जाता है, आपको क्या लगता है?
दुख की बात यह है कि अब हमारे देश की जो हालत है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बैंड्स और पॉप म्यूजिक, और जो शास्त्रीय संगीत भी है द यंगर जनरेशन वो खड़े होके सितार को गिटार की तरह बजा रहे हैं और ड्रम सेट के साथ बजा रहे हैं फॉर पॉपुलैरिटी, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है और लोग टिकट खरीद के यहाँ पे इज्जत के साथ टिकट खरीद के आपके कॉन्सर्ट सुनते हैं, जबकि दिल्ली और बहुत बड़े बड़े शहरों की इंडिया में ये हालत हो गई है कि क्लासिकल प्रोग्राम में आप जब तक फ्री टिकट नहीं बांटेंगे तब तक लोग नहीं आते, अनलेस अनलेस देर आर यू नो फ्यू स्टार्स, जो चार पांच स्टार्स हैं उनके नाम पे लोग आते हैं, बट मेजॉरिटी जब तक आप फ्री टिकट नहीं बांटेंगी तो इट्स अ ट्रेजेडी कि हम अपने देश में हमारे धरोहर, हमारी जो संस्कृति है उसकी हम इज्जत कम करने लगे हैं। और बाहर तो बहुत इज्जत है, और बाहर आके इसीलिए हर इंडियन क्लासिकल आर्टिस्ट, शास्त्रीय संगीत संगीतकार आप देखिए वो बाहर विदेशों में कितना टूर करते हैं।
जी, संगीत की कोई भाषा तो नहीं होती है, सिर्फ ये विडंबना ही कहेंगे कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है भारत का वो विदेशों में ज़्यादा पहचान पाता है बनस्पत भारत के। तो आपने चूंकि कोलाबरेट किया है विदेशी कलाकारों के साथ, में भारत के भी किसी कलाकार के साथ कोलाबरेट करना चाहेंगे? शायद ये मेरा आपके लिए आखिरी सवाल होगा।
नहीं, मैं मेरी करियर जो शुरू हुई और पूरी बनी वो इंडियन आर्टिस्ट के साथ ही। मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट जिनके साथ मैं टूर करना शुरू किया अभी बहुत बड़ी स्टार हैं, श्रीमती शुभा मुद्गल
जी,
तो उनके साथ मैं टूर करना शुरू किया। फिर पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद शुजात खान, फिर धीरे धीरे मैं उस्ताद अमजद अली खान, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो इन सबों के साथ मैं बजाया हूँ और वहाँ पे कोलैबोरेट किया है। और इंडिया के जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, डोवरलैंड फेस्टिवल या सप्तक फेस्टिवल, हर जगह मैं बजाया हूँ और वो मैं बजाता रहता हूँ उनके साथ। और शुभा मुद्गल तो मेरी अपनी दीदी जैसी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया भी काफी टूर करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन आर्टिस्ट लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैंने जो टॉप लेवल के आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया और वो कोलैबोरेशन जारी है।
जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके संदीप जी, और आपने हमारे लिए ये समय निकाला है। मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त थे और बहुत ही छोटा सा आपके पास में समय बचा था हमारे लिए, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बस अब हमें इंतज़ार रहेगा कि आप यहाँ आएंगे और आपके संगीत का हम आनंद लेंगे।
ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने के लिए और अपने देशवासियों के लिए। और अब आप तो अपने हैं तो आप लोगों के लिए हमेशा ही समय है और समय रहेगा, और बिल्कुल आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि आप लोगों से मिलना होगा। थैंक यू सो मच।
आपका बड़प्पन है, नमस्कार।
आपके विचार हमें बताएं, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।